Om Shanti. 15th April 1981. रूहानी नॉलेज के कारण और आत्मा की कर्म कहानी के पाठ के संस्कारों की लाइट और माइट होने के कारण जो भी देखेंगे, सुनेंगे, संपर्क में, संबंध में आएंगे, हर कर्म में अति न्यारे और अति प्यारे होंगे। न्यारे और प्यारे बनने की समानता होगी। किस समय प्यारा बनना है, किस समय न्यारा बनना है, यह पाठ बजाने की विशेषता आत्मा को सदा सुखी और शांत बना देती है। रूहानी संबंध होने के कारण बुद्धि, एकाग्रता के कारण निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सर्वशक्तियां हर आत्मा के पाठ और अपने पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आते हैं, इसलिए अचल और साक्षी रहते हैं। ऐसी तकदीरवान आत्मा हर संकल्प और कर्म को, हर बात को त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो देखती है, इसलिए क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाता है। यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क है, सदा फुल स्टॉप। सभी को तीन बिंदी का तिलक लगा हुआ है ना, उसमें आश्चर्य नहीं लगता। नथिंग न्यू, क्या हुआ नहीं, क्या करना है, यह है नंबर वन तकदीरवान। अव्यक्त मुरली, 15th April 1981। बाबा कह रहे हैं, मुरली का शीर्षक है नंबर वन तकदीरवान आत्मा की निशानी, जिसमें बाबा नंबर वन जो तकदीरवान आत्माएं हैं उनकी निशानियां सुना रहे हैं। तो जो नंबर वन तकदीरवान आत्माएं हैं उसमें बहुत सारी चीजें होती है। कुछ बातें इससे पहले बताई हुई है, नंबर वन की निशानी क्या है और नंबर टू की निशानी क्या है। जो नंबर वन है वो बेहद में रहने वाली है। इस मुरली में एक बहुत सुंदर महावाक्य है, हद में दुख है और बेहद में सुख है। तो जो नंबर वन की आत्माएं हैं उन्हें सारे ही विश्व की आत्माओं से प्यार है, और हरेक के प्रति यह भावना है कि हरेक सुखी हो जाए, दुख किसी के जीवन में ना रहे। और फिर बाबा ने कहा कि रूहानी नॉलेज उनके पास है, ज्ञान गुण शक्तियां उनके पास है, उसको वो प्रयोग करती है और प्राप्ति स्वरूप है। और क्योंकि उनके पास रूहानी नॉलेज है तो उस रूहानी नॉलेज के कारण वो हर आत्मा की कर्म कहानी के पाठ के संस्कारों की लाइट और माइट होने के कारण जो भी देखेंगे, सुनेंगे, संपर्क में, संबंध में आएंगे, हर कर्म में कैसे रहेंगे, न्यारे और अति प्यारे। न्यारे और प्यारे बनने की समानता होगी। किस समय प्यारा बनना है और किस समय न्यारा बनना है, यह पाठ बजाने की विशेषता आत्मा को क्या करेगी, उसे यह पता है कि कहां पर लविंग होना है और कहां पर डिटैच हो जाना है, कहां पर न्यारे बनना है और कहां पर प्यारे हो जाना है। और क्योंकि यह स्पेशलिटी उस आत्मा में है, क्योंकि यह विशेषता उस आत्मा में है, तो वह आत्मा सदा कैसी रहेगी, सुखी और शांत रहेगी। रूहानी संबंध होने के कारण, संबंध कैसा होगा, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। रूहानी संबंध के कारण क्या होगा, बुद्धि, एकाग्रता के कारण, रूहानी संबंध के कारण एकाग्रता होगी। अर्थात जहां रूहानी संबंध नहीं है वहां पर एकाग्रता नहीं है। इस एकाग्रता के कारण निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सर्व शक्तियां हर आत्मा के पार्ट और अपने पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आएंगे, इसलिए अचल और साक्षी रहेंगे। संबंधों में भी डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप, संबंधों में भी साक्षी और स्टेबल अचल। ऐसी तकदीरवान आत्मा हर संकल्प और कर्म को, हर बात को किस स्थिति में स्थित हो देखेगी? त्रिकालदर्शी। इसलिए क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाता है। यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क है। यह क्यों, यह क्या, सदा फुल स्टॉप। सभी को तीन बिंदी का तिलक लगा हुआ है ना, उसमें आश्चर्य नहीं लगता। नथिंग न्यू, क्या हुआ, नहीं, क्या करना है, यह है नंबर वन तकदीरवान। 15 अप्रैल 1981। रूहानी संबंध, संबंधों में न्यारापन और प्यारापन। प्यारेपन की चर्चा करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी न्यारेपन की। संबंधों में डिटैचमेंट, संबंधों में न्यारापन। एक शब्द बाबा ने प्रयोग किया है लगाव, एक दूसरा शब्द प्रयोग किया है किनारा करना, और तीसरा एक शब्द है न्यारा। एक है लगाव, दूसरा है किनारा, तीसरा है न्यारा। एक शब्द है अटैचमेंट, एक शब्द है इनडिफरेंस, बीच का एक शब्द है जिसे कहा है न्यारापन। एक शब्द है आसक्ति, दूसरा शब्द है अनासक्ति, एक तीसरा बीच में शब्द है। एक शब्द है आसक्ति, एक है विरक्ति, और तीसरा जो बीच में है वो है अनासक्ति। अनासक्त हो जाना और विरक्त हो जाना, इसमें भी भेद है। सबसे पहले इस भेद को समझना जरूरी है कि न्यारा हो जाना और किनारा हो जाना, इसमें क्या अंतर है। बाबा ने कहा न्यारा बनो, किनारा करने को नहीं कहा है, इसमें क्या डिफरेंस है। किनारा कर लेना क्रोध का अंश है, और इंडिफरेंस अर्थात कोई कंसर्न नहीं, कोई लेना देना नहीं। परंतु न्यारा बन जाना यह इंडिफरेंस नहीं है, उस न्यारेपन में डिटैचमेंट है, पर वो डिटैचमेंट लविंग डिटैचमेंट है, यह अंतर है। एक मार्ग संसारियों का मार्ग है, दूसरा मार्ग सन्यासियों का मार्ग है। एक मार्ग कहता है लगाओ, आसक्ति, मोह, ये विकार के अंश है। दूसरा मार्ग इसका शीर्षासन, वो कहता है न्यारे हो जाओ, किनारा कर लो, इंडिफरेंस हो जाओ, इंडिफरेंट हो जाओ, अनासक्त हो जाओ। परंतु एक बीच का एक मार्ग है, वो है संबंधों में न्यारापन, वो है लविंग डिटैचमेंट। अलग अलग शब्दों के प्रयोग है। गीता में अनासक्ति कहा गया है, महावीर ने वितराग कहा है, बुद्ध ने उपेक्षा कहा है, क्राइस्ट ने होली इंडिफरेंस कहा है। चित्त की अवस्थाएं हैं होली इंडिफरेंस। गीता में, संसार की जो गीता है, कृष्ण उसमें कहते हैं अनासक्त, महावीर कहते हैं वितराग, क्राइस्ट ने कहा होली इंडिफरेंस, बुद्ध कहते हैं उपेक्षा, बाबा कहते हैं न्यारे हो जाओ। थोड़ा थोड़ा भेद है सभी में। न्यारी वह अवस्था है कि जिसमें घृणा भाव नहीं है, हेट्रिड नहीं है, नफरत नहीं है, परंतु आसक्ति भी नहीं है, परंतु लगाव भी नहीं है, परंतु मोह भी नहीं है। अनासक्ति संसार में बहुत सारे अभागे शब्द है, उनमें से एक है। अनफॉर्चुनेट वर्ड्स कि जिनका लोगों ने गलत अर्थ लगाया है। अनासक्ति कहते ही लोगों के मन में आता है छोड़ दो, किनारा कर दो, अलग हो जाओ। इसके लिए बाबा ने इनमें से किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया और एक नया शब्द प्रयोग किया। कौन सा? न्यारा हो जाओ। हिंदी साहित्य में यह शब्द कहीं नहीं है, है परंतु उस अर्थ से प्रयोग नहीं होता है जिस अर्थ से बाबा प्रयोग करते हैं। न्यारे हो जाना। इंडिफरेंस क्राइस्ट ने भी कहा है, परंतु शब्द जोड़ा होली इंडिफरेंस। बुद्ध ने कठोर शब्द का प्रयोग किया उपेक्षा, उसकी समानता थोड़ी थोड़ी इंडिफरेंस के साथ है, क्योंकि संसार दुख है, उपेक्षा करो इसकी। महावीर ने कहा एक तरफ राग है, एक तरफ विराग है। एक त्रिकोण, एक ट्रायंगल अगर निकाला जाए, एक तरफ राग बैठा है, दूसरी तरफ विराग। एक तरफ संसार से आसक्ति है, दूसरी तरफ संसार से संपूर्ण अनासक्ति। एक तरफ भोग है, एक तरफ विरक्ति। एक तरफ गृहस्थ, दूसरी तरफ संन्यास। उसने एक नया शब्द कहा ऊपर, वितराग। राग और विराग से भी परे, क्योंकि जिन्होंने संन्यास का भी मार्ग लिया है वो भी उस संन्यास में आसक्त है। वहां भी मैं है, संन्यास लिया था मैं को छोड़ने के लिए, क्योंकि संसार अर्थात मैं। एक व्यक्ति था जिसने संन्यास ले लिया और कई सालों तक अकेला ही रहा, लगभग 30 साल। उसका एक पुराना मित्र उससे मिलने आया और उसने कहा कि संन्यास तो बहुत लोग लेते हैं परंतु सभी फंस जाते हैं आश्रमों में और शिष्य बनाने में। आपकी बैच वाले, बैच अर्थात तुम्हारे साथ जिन्होंने भी संन्यास लिया था, आज उनके बड़े बड़े आश्रम हैं, आज उनके हजारों शिष्य हैं, और मैं देखता हूं तुम अभी भी अकेले हो। वो कहता है हाँ, मेरा एक भी शिष्य नहीं है। क्या कहता है? मेरा मेरा एक भी शिष्य नहीं है। जिनके बहुत सारे शिष्य हैं उनको कौन सा अभिमान है? हमारे हजारों शिष्य हैं। और जिसका कोई भी शिष्य उसने नहीं बनाया, उसे एक दूसरे प्रकार के अभिमान ने जकड़ लिया। कौन सा? मेरा एक भी शिष्य नहीं है। देखो, मेरा एक भी आश्रम नहीं है। उनके कितने बड़े बड़े आश्रम है। उनको आश्रम का अभिमान, उनको शिष्यों का अभिमान। एक तरफ तो राग है जो गृहस्थी उसमें फंसा है, परंतु दूसरी तरफ सन्यासी है वो भी राग में ही फंसा है। किसका राग? जो छोड़ा है उस पे राग। अनासक्त आसक्ति, त्याग की आसक्ति, उसमें ही फंसा है। मैंने एक भी शिष्य नहीं बनाया, उसमें ही फंसा है। उसका अभिमान, सन्यास मैं को छोड़ने का मार्ग है, परंतु वो उसमें फंसा है। इसके लिए महावीर ने कहा एक तीसरा शब्द है ऊपर त्रिकोण में, एट द टॉप ऑफ द ट्रायंगल, वितराग। जो ना ये है ना वो है, उन सब से वो परे है। आसक्ति भी नहीं, विरक्ति भी नहीं, अनासक्ति। बाबा कहते हैं लगाव भी नहीं और किनारा भी नहीं, न्यारा। वो न्यारेपन की जो अवस्था है वो, नहीं तो हर चीज में फंसना ही है। कुछ भोग करो कोई चीज का तो फंसते हैं, उस चीज का त्याग करो तो उस त्याग में फंसते हैं। कोई हर चीज खाता है तो उसमें फंसा है। कोई चीज छोड़ता है कि मैं आज से ये नहीं खाऊंगा तो उस छोड़ने में फंसते हैं। मैंने ये छोड़ा है वीगन, उस वीगनिज्म में फंसे हैं कि हम ये नहीं खाते। नया संप्रदाय, मैं की तृप्ति हर व्यक्ति चाहता है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था जगत गुरु। तो किसी ने उसकी बहुत ख्याति सुनी और उससे मिलने वो उसके पास गया। उसको लगा नाम उसका है जगत गुरु तो बहुत बड़ा आश्रम होना चाहिए, क्योंकि जगत गुरु है हजारों लाखों शिष्य होने चाहिए। तो देखता है एक छोटी सी कुटिया है और अकेला ही रहता है। वो कहता है ऐसे कैसे आश्चर्य होता है उस व्यक्ति को कि आप तो जगत गुरु है। वो कहते हैं जगत गुरु तो हूं पर मेरा एक ही शिष्य है जिसका नाम जगत है, इसलिए मैं जगत गुरु हूं क्योंकि मैंने ही उसका नाम जगत रखा। तो चर्चा का विषय है रूहानी संबंध। संबंधों में रूहानियत कैसे लाए, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप वर्सेस मटेरियल रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप वर्सेस रोमांटिक रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप वर्सेस सेंशुअल रिलेशनशिप। संबंधों को रूहानी कैसे बनाएं, उसमें 8 बातें हम देखेंगे कि संबंधों को आध्यात्मिक कैसे बनाया जाए, जिसको बाबा कह रहे रूहानी संबंध हो। सबसे पहली बात डिटैचमेंट। दो व्यक्ति, भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, कोई भी दो व्यक्ति, कोई भी दो आत्माएं, उनमें यदि कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध है तो सबसे पहली बात वहां चाहिए डिटैचमेंट। क्यों? क्यों? महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, दुखद प्रसंग 1, दुखद प्रसंग 2, ट्रेजिडी चैप्टर का नाम है ट्रेजिडी 1, ट्रेजिडी 2, उसमें वर्णन किया है कि जब वो छोटे थे 16 साल के, विवाह हो चुका था, पत्नी उम्र में बड़ी थी और उनकी मित्रता एक ऐसे उनके एक स्कूल में एक व्यक्ति से हुई जो कि उनके बड़े भाई का क्लासमेट था, और वो मित्रता सुधारक के रूप में हुई क्योंकि जो जिससे मित्रता हुई, जो मित्र था थोड़ा सा बड़ा था उम्र में, उसमें बहुत सारी गंदी आदतें थी और ये उनको भी पता था, परंतु फिर भी मित्रता की इस भाव से की कि मैं इसे सुधारूंगा। सुधारने के भाव से पत्नी ने समझाने का प्रयत्न किया, पर पत्नी की बातों को मैं कैसे मानूं, क्योंकि पति का अहम था इसलिए मैंने उसकी बातों को नहीं माना, परंतु मां ने फिर समझाया, बड़े भाई ने समझाया, फिर भी मैंने उन्हें यह समझाया कि मैं उसको सारी कमजोरियों को मैं जानता हूं, परंतु आप लोग उसकी कमियों को नहीं जानते। ये जो मित्रता है, ये जो सोहबत है, वो उसको सुधारने के लिए है। तो दिखाया कि उन्होंने अपना वर्णन अनुभव लिखा कि मैंने बहुत प्रयत्न किया उसे सुधारने का, परंतु मित्रता हमेशा समान व्यक्तियों में होनी चाहिए और किसी भी मित्रता में घनिष्ठता जब आ जाती है, फैमिलियरिटी, तब वो डिटेरियोरेशन चालू हो जाता है, उसका पतन चालू हो जाता है उस संबंध में। वो मित्र जो था मांसाहारी था और उसने मुझे, मैंने उसे बहुत तरीके से समझाने का प्रयत्न किया, सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु धीरे धीरे उसका ही प्रभाव मुझ पर पड़ते गया क्योंकि मैं बहुत डरपोक था, मुझे डर लगता था, अकेले में जा नहीं सकता था, अकेले में मुझे लगता था यहां से सांप आ रहा है, यहां से भूत आ रहा है, और मेरी जो पत्नी थी बहुत ही निडर थी, वो कहीं पर भी अकेली चली जाती थी और मुझे ये पता था, और ये जो मित्र था वो कहता था कि मैं हाथ में सांप को पकड़ सकता हूं, तो मैं उससे प्रभावित हुआ, जबकि मैंने उससे मित्रता की थी उसको सुधारने के लिए। परंतु उसका ही प्रभाव मुझ पर पड़ने लगा, क्योंकि उसने कहा कि व्यक्ति जो है इतने संसार में जो अंग्रेज है वो इतने शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि वो मांस खाते हैं। उनमें इतना बल क्यों है, क्योंकि वो मांस खाते हैं। तो हर रीति से उसने मुझे समझाने का प्रयत्न किया और मुझ पर धीरे धीरे असर होने लगा। और उनका जन्म जैन धर्म में हुआ है, बिना मां बाप को बताए उन्होंने फिर धीरे धीरे मांसाहार चालू किया उस मित्र के साथ, क्योंकि उसके पास तो पैसे थे नहीं, उनके पास वो मित्र ही सारा अरेंजमेंट करता था। पहली बार का वर्णन किया है कि कैसे वो मुझे लेकर किसी जंगल में गया और वहां पर पहली बार जब मैंने मांस खाया तो रात भर मुझे नींद नहीं आई, वो चमड़ा अंदर से, वो जैसे बकरा अंदर से चिल्लाता रहा रात भर, उन्होंने अनुभव लिखा है। और फिर धीरे धीरे टेस्ट आने लगा, फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, फिर धीरे धीरे ये मीटिंग बार बार होने लगी, फिर वो एक बंगला था वहां होने लगी। और मैंने माँ बाप से छिपा के रखा, यहां तक भी सोचने लगा कि माँ बाप को ये मुझे बाद में चालू करना चाहिए, माँ बाप की मृत्यु के बाद, क्योंकि उन्हें बहुत दुख होगा अगर उन्हें पता चल गया वो एकदम शुद्ध वैष्णव परिवार है, हवेली में जाने वाले हैं, वैष्णव मंदिर जो है उसको हवेली कहते हैं। तो वो जो मित्रता उस व्यक्ति से की थी उन्होंने, वो थी उसको सुधारने के लिए, परंतु वो खुद ही प्रभावित हो गए, क्योंकि दो व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। आत्मचरित्र में लिखा है, दो व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। यदि हम इसलिए हम किसके साथ मैत्री कर रहे हैं, बहुत आवश्यक है। वहीं पर उन्होंने लिखा है, जो व्यक्ति ईश्वर की खोज में है उसे एकाकी ही रहना चाहिए, अकेला, या फिर यदि उसे मैत्री करनी है तो समूचे विश्व से वो मैत्री करे, परंतु किसी एक व्यक्ति से नहीं, क्योंकि वहां अटैचमेंट उत्पन्न हो जाती है। दूसरा उन्होंने बताया, व्यभिचार। वो व्यक्ति, वो मित्र मुझे एक बार एक वेश्या के पास लेके गया और वहां जाते ही मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, पसीना आ गया और भगवान ने मेरी रक्षा की और मैं निकल के आ गया। ऐसे दो प्रसंग उन्होंने वर्णन किया है, चैप्टर 6, चैप्टर 7, ट्रेजेडी 1, ट्रेजेडी 2, दुखद प्रसंग 1, दुखद प्रसंग 2। और सारांश ये बताया कि मैं सोचता था कि उसके साथ दोस्ती करके उसको सुधारूंगा, पर मैं खुद ही प्रभावित हो गया, खुद ही मैंने मांसाहार चालू किया। और यदि मेरे माँ बाप को ये पता चले तो उनको कितनी पीड़ा होगी, कितना दुख होगा, इसका मैं अंदाजा भी नहीं कर सकता, लगा सकता। इसके लिए रूहानी संबंध फर्स्ट पॉइंट जो है वो है डिटैचमेंट। खलील गिब्रान ने किताब लिखी है द प्रोफेट, उस प्रोफेट में अल मुस्तफा नाम का प्रोफेट है, उसमें प्रश्न उत्तर है। उस अल मुस्तफा से बहुत सारे लोग बहुत सारे जीवन के प्रश्नों के बारे में, जीवन की जो समस्या है उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं अल मुस्तफा से, उस जहाज में। इस किताब का लगभग 40 भाषाओं में रूपांतर ट्रांसलेशन अनुवाद है। अल मुस्तफा को पूछते हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट लव, तुम प्रेम के बारे में क्या सोचते हो। अल मुस्तफा कहता है, दो व्यक्तियों के बीच यदि प्रेम है, वो प्रेम कैसा होना चाहिए, एक बार सुनाया था, मंदिर के जैसे खंबे है, मंदिर के चार खंबे जैसे अलग अलग होते हैं, इसके लिए दो व्यक्ति जो आपस में प्रेम करते हैं, दो व्यक्तियों का जो आपस में संबंध है, उनमें उतनी ही दूरी होनी चाहिए जैसे मंदिर के चार खंबों में। यदि वो चार खंबे समीप आ गए तो मंदिर गिर जाएगा। इसलिए स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में फर्स्ट पॉइंट है डिटैचमेंट। व्यक्ति व्यक्ति का संबंध, स्त्री और पुरुष का संबंध, बहन और भाई का संबंध, सास और बहू का संबंध, मां और बेटे का संबंध, मां और बेटी का संबंध, संसार के कोई भी संबंध हो, क्योंकि डिटैचमेंट गिव्स यू स्पेस, स्पेस देता है, और स्पेस बहुत जरूरी है, हर एक को स्पेस चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में दूसरी पॉइंट है understanding, deep understanding. Teach me to understand, then to be understood. हे प्रभु मुझे ये सिखा कि मैं दूसरों को समझूं, ये नहीं कि वो मुझे समझे. सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी भगवान से प्रार्थना करते हैं, टीच मी ओ लॉर्ड टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. दूसरे मुझे समझे ये मेरी कम इच्छा हो, परंतु मैं दूसरों को समझूं, ये मुझे तू सिखा. इसके लिए किसी को हमने फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, तुरंत नाराज. फोन उसके पास होगा ही नहीं, कहीं और रखा होगा. हम सोचेंगे जानबूझ के, और पता भी चल गया शायद कोई आंतरिक कारण होगा, वो चाहता होगा कि मैं कुछ दिन डिटैच रहूं, तो उसे जगह चाहिए होगी, स्पेस चाहिए हर एक को, स्पेस टू ब्रीथ, श्वास लेने के लिए. तुम्हारी श्वास से बहुत ज्यादा है, बहुत भारी है, उसकी आवाजों से वो थोड़ा दूर होना चाहता है. स्पेस, पर्सनल स्पेस, प्राइवेट स्पेस, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग. यदि दो व्यक्तियों के संबंध में एक व्यक्ति अचानक से डिटैच हो जाए, तो जबरदस्ती उसे बोलने में, बात करने में, अटैचमेंट में लाने में फोर्स करने की आवश्यकता नहीं है. यदि वो डिटैच हुआ है तो जरूर कुछ ना कुछ तो कारण होगा. होने दो, लेट हिम बी, होने दो, उसको भी तो टाइम दो थोड़ा. थर्ड पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता. छिपा छिपा के करना कुछ कुछ चीजें. यदि दो व्यक्ति है, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो या कोई भी, परंतु यदि उनमें पारदर्शिता नहीं है, छिपाने की कोशिश करते हैं, तो वो संबंध रूहानी संबंध नहीं. इसलिए जितना हो सके दो व्यक्ति ट्रांसपेरेंट रहे. चौथा है सोल कॉन्शियसनेस. दो व्यक्तियों के संबंध के बीच में आत्मिक संबंध हो, नहीं तो वो दैहिक संबंध की तरफ खींचा चला जाता है, घसीटते हुए चला जाता है. दो व्यक्तियों की आपस में जो बातें हो वो स्पिरिचुअल टॉक्स हो, नहीं तो वो रोमांटिक टॉक, वो अटैचमेंट वाली टॉक, कब सेंशुअल टॉक और कब सेक्सुअल टॉक बन जाए, ये नहीं बताया जा सकता है. वो मैसेज स्पिरिचुअल जो था वो कब दैहिक में रूपांतरित हो जाए, ये भी नहीं बताया जा सकता है. इसलिए रूहानी संबंधों में सोल कॉन्शियसनेस एंड गॉड कॉन्शियसनेस, बीच में बाबा हो, बीच में ज्ञान की तलवार हो. यदि वो नहीं तो वो भाई बहन का ही संबंध क्यों ना हो, वो टीचर और स्टूडेंट का ही संबंध क्यों ना हो सेंटर पर, वो ज्ञान में चलने वाले युगल का ही संबंध क्यों ना हो, जहां पवित्रता की धारणा तो की परंतु भावनाएं, यदि भावनाओं में रोमानियत, रोमानी पता है ना, एक है रूहानी एक है रोमानी, रोमानी रोमांटिक अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, रोमानी रोमानी भावनाएं, रूहानी से रोमानी की यात्रा फटाफट हो सकती है. सोल कॉन्शियसनेस, ये चार बातें. फिर और चार, क्या क्या नहीं होना चाहिए संबंधों में. एक, नो डाउट और सस्पिशन, शक. शक की बीमारी ऐसी है कि उसका कोई इलाज है क्या शक का? किसी को यदि शक हो जाए, पत्नी को यदि पति पर शक हो जाए, तो उसको कन्विंस किया जा सकता है? मुश्किल है। डीप अंडरस्टैंडिंग होगा तो डाउट भी नहीं होगा। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग को ही बढ़ाना है, जो कहा सेकंड पॉइंट, डीप अंडरस्टैंडिंग। तो नो डाउट की अवस्था स्वतः ही आ जाएगी, नो सस्पिशन। नहीं तो कुछ ना कुछ कारण व्यक्ति ढूंढता है। झगड़े के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति देखता है कि उसकी पत्नी रोज उससे झगड़ती है, और जब भी झगड़ा होता है वो भी तो कुछ बोलता है। एक दिन सोचता है आज कुछ बोलूंगा ही नहीं, सुबह से चुप हो रहता है। फिर वो आती है कि क्या बोलती है तुम आज चुप क्यों हो, और झगड़ा चालू। नो डाउट, जो एक बार भी कहा था, एक व्यक्ति को शक होता है उसके पति, एक पत्नी को शक होता है उसके पति पे कि जरूर ये किसी के साथ तो घूमता है, क्योंकि वो देखती है उसके कोट में एक दिन बाल होता है, तो उस पर जबरदस्त शक रहता है। तो रोज आकर वो चेक करती है सबसे पहले। तो एक दिन देखती है कि पूरा चेक करने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिलता है, तो वो कहती नाउ यू स्टार्टेड रोमिंग विथ बाल्ड वुमन। नो ब्लेम गेम। अगला पॉइंट है ब्लेम गेम। तुम्हारी वजह से, तुमने लेट किया, तुम्हारी गलती है, तुमने ही कहा था ये खरीदो, अब खराब निकला ना। ब्लेम गेम, एक दूसरे को ब्लेम करते रहना सुबह से लेकर रात तक। ब्लेम गेम सबसे ज्यादा खेला जाने वाला ये खेल है। दुनिया का सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल कौन सा है? ब्लेम गेम। क्रिकेट नहीं, फुटबॉल नहीं, ये सबसे ज्यादा हर घर घर में खेला जाता है। इंडोर एंड आउटडोर दोनों जगह खेला जाता है ब्लेम गेम। नो डाउट, नो सस्पिशन, नो ब्लेम गेम। उसमें एक दूसरा पक्ष भी है इसका, खुद को ब्लेम करना। एक है दूसरों को ब्लेम करना, एक है कोई भी गलती हो तो अपने आप को ब्लेम करना, और यह भी बहुत खतरनाक रूप ले लेता है, खुद को ब्लेम करना। उसमें फिर बहुत सारी बातें आ जाती है। खुद को ब्लेम करेंगे, मेरी ही गलती है, मेरे ही वजह से हुआ, मैं ही ऐसी हूं, कब तक तुम मुझे सहन करोगे? एक तरीके से तो अच्छा लग रहा है, सामने वाले के अहम को संतुष्टता होती है, परंतु ये संबंध रूहानी संबंध नहीं है, जिसमें खुद ही को ब्लेम किया जा रहा है। फिर है नो वेस्ट। मनसा सेवा की एक क्लास में हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी वेस्ट रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में वेस्टेज कहां कहां है? यहां ब्राह्मण परिवार में कौन कौन सी चर्चाएं है जो दो व्यक्ति अगर करे तो वो वेस्ट रिलेशनशिप होती है। बहुत सारी उसमें बातें हमने गिनाई थी। एक तो सेंशुअल टॉक्स, दैहिक की बातें, राजनीति में क्या चल रहा है, खेलों में क्या चल रहा है, दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, कौन सी फैशन है, करंट अफेयर्स, वेदर, साधन, कौन सा मोबाइल तुम्हारे पास है, मेरे पास ये है, और उस पर चर्चा चालू आधा घंटा। कौन से साधन बाजार में आए हैं, लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, उसकी चर्चा। वेस्टफुल रिलेशनशिप अर्थात जिनका आधार ही ये होता है, या फिर अपना लौकिक घर, लौकिक देश, लौकिक भाषा, तुम भी यूपी से हम भी यूपी से और चालू, तुम भी पंजाब से और हम भी पंजाब से और पंजाबी में भाषा में चालू। उसमें रूहानियत नहीं है, फिर उसमें लौकिकता है। उसमें फिर हमारे घर में ऐसा होता था, हमारे घर में वैसा होता था, वो चालू हो जाता है। फिर हमारे घर में ये हमारी माँ बनाती थी, यहां आ गए हैं मधुबन में, परंतु उधर की दाल और रोटी अभी भी याद है, उसमें अभी भी अपनापन है। सारा संसार छोड़ दिया है, यहां आ गए, परंतु बरन भात दाल रोटी अब भी याद आती है मां के हाथ की। कट द ब्रिजेस, थ्रो द लैडर, ड्राउन द बोट। जिस नाव से उस किनारे से इस किनारे में आए हो, उस नाव को अब डुबो दो, ड्राउन द बोट। जिस पुल बांधकर उस खाई से इस खाई में आए थे, कट द ब्रिजेस, उस ब्रिज को काट दो। जिस सीढ़ी से नीचे से चढ़कर ऊपर पहुंचे थे, थ्रो द लैडर। ये संन्यास की परिभाषा है। वह आसक्ति एक दिन वहीं पहुंचा देगी जहां से आए थे। अगला है नो वेस्ट, कहा नो बॉडी कॉन्शियसनेस। जिस संबंध में ही देह भान है, स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भाव है, जिस संबंध में देहभान की बातें है, देहभान से संबंधित सारी बातें, एक दूसरे के ड्रेस की जहां पर स्तुति है, ये ड्रेस में तुम अच्छे लगते हो। किसी एक बहन ने मैसेज दिखाया कि एक भाई ने मैसेज भेजा है कि ये स्वेटर में आप बहुत अच्छे लग रहे हो। प्रेज कपड़ों की और देह की नहीं करनी है, क्योंकि मैसेज के द्वारा जब जा रही है तब वहां देहभान आएगा, और वहां से अगर एक्नॉलेजमेंट हो गया तो वो संबंध, एक नए संबंध की नींव यहां पर पड़ेगी, एक देहभान के संबंध की यात्रा का आरंभ होगा। उसका अंत कहां होगा ये बताना मुश्किल है। अंत कहां होगा ये तो छोड़ दो, परंतु इस यात्रा में ही रूठना और रूसना होगा बीच बीच में। वो रूठेगा फिर उसको मनाओ, फिर कभी ये रूठेगा फिर इसको मनाओ, रूठना और रूसना, रूठना और रूसना, ये खेल चालू रहेगा। क्या करना है? संबंधों को रूहानी बनाना है। रूहानी नॉलेज के कारण हर आत्मा की कर्म कहानी के पाठ के संस्कारों की लाइट और माइट होने के कारण जो भी देखेंगे सुनेंगे संपर्क संबंध में आएंगे हर कर्म में अति न्यारे और अति प्यारे होंगे। तो अपने सभी संबंधों में क्या लाना है? डिटैचमेंट, न्यारापन, लविंग डिटैचमेंट। किनारा नहीं, घृणा नहीं, नफरत नहीं। लोग जो आपस में घनिष्ठ संबंध होते हैं और तुरंत जब ऐसी क्लासेस को सुनते हैं या इस ज्ञान को सुनते हैं तो तुरंत डिटैचमेंट आ जाता है और तुरंत सोचते हैं आज से संबंध खत्म, धड़ाम से एकदम कट द ब्रिज, थ्रो द लैडर, ड्राउन द बोट, आज से इसी वक्त। दो दिन ठीक रहेगा, 10 दिन ठीक रहेगा और फिर तूफान आएगा और फिर डूब जाएंगे। अगर डिटैच होना भी है किसी व्यक्ति से, शने ही शने, धीरे धीरे, एकदम नहीं तोड़ दो। एकदम तोड़ोगे तो खुद का ही मन विद्रोह करेगा, रिवॉल्ट होगा। इवोल्यूशन नॉट रिवॉल्यूशन। न्यारे और प्यारे बनने की समानता होगी। किस समय न्यारा बनना, किस समय प्यारा बनना, यह पाठ बजाने की विशेषता आत्मा को सदा सुखी शांत बना देती है। रूहानी संबंध होने के कारण बुद्धि एकाग्रता के कारण निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सर्वशक्ति आत्मा के पाठ और अपने पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आते हैं, इसलिए अचल और साक्षी रहेंगे। ऐसी तकदीरवान आत्मा हर संकल्प और कर्म को, हर बात को त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो देख सकती है। उसको भी स्पेस दो त्रिकालदर्शी बनने के लिए। एक है खुद त्रिकालदर्शी बनना, एक है दूसरों को भी तो टाइम दो थोड़ा त्रिकालदर्शी बनने का। हम ही बनते रहेंगे त्रिकालदर्शी, इसलिए क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाते हैं। क्या क्यों यह क्वेश्चन मार्क है, सदा फुल स्टॉप, सभी को तीन बिंदी का तिलक लगा हुआ है ना, उसमें आश्चर्य नहीं लगता। नथिंग न्यू, क्या हुआ नहीं, क्या करना है, यह है नंबर 1 तकदीरवान आत्माओं की निशानी। ओम शांति।